दुनिया में विख्यात है सुनो ओरछा गाम। धरती बुंदेली जहां बुंदेलन को धाम, किस सदी सोलवी में हुए वीर सिंह जुदेव और राज और छे में करें लगा राम से नेव। तीन ब्याहे राजा करे थे ग्यारह सुकुमार, और बड़ी मालकिन से हुए कुंजा और जुझार। और छोटी की कूख में पली बुंदेलन बोल, और सोलह सौ नौ में हुए बुंदेला हर दौल। हाँ, ये एक ऐसी कहानी है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का नाम ही बुंदेलों की बदौलत है। बुंदेलखंड के बारे में एक छंद सुन लीजिए।
कि जल के भूखंड पे विशाल एक हिंद देश, ताके मध्य लागे बुंदेलखंड ताल सौ, संस्कृति सभ्यता वीरता और बोली को देश और विदेशन में फैलाए जाल सो। चंपत को लाल भव बुंदेला वीर बांको एक, कालहू के कालन को बनो महाकाल सो। देखे हैं विश्व में विशाल वीर लाल, किंतु देखो न छत्रपति वीर छत्रसाल सो।
अभी भी झांसी से 16 किलोमीटर दक्षिण में मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में एक नगर है बेतवा नदी के किनारे। उस नगर का नाम है ओरछा। 16वीं शताब्दी में महाराज वीर सिंह जुदेव वहां राज करते थे। महाराज वीर सिंह जुदेव ने तीन शादियां की और तीनों शादियों से उनके 11 लड़के हुए और एक लड़की हुई जिसका नाम हुआ कुंजावती। उन तीनों रानियों में सबसे बड़ी रानी के जो सबसे बड़ा लड़का हुआ उनका नाम था नृजुझार सिंह, और जो सबसे छोटी रानी थी उसके जो कुंवर हुए एक ही कुंवर उनका नाम था हरदौल सिंह। लेकिन जब हरदौल पैदा हुए तो हरदौल और जुझार सिंह की उम्र में इतना फर्क था कि जुझार सिंह की शादी हो गई थी और हरदौल पैदा हुए थे। जब हरदौल पैदा हुए थे उसी समय पर जुझार सिंह के लिए एक लड़का पैदा हुआ था। अब देखिए ये कहानी ऐसी मर्यादा ऐसी आन बुंदेलों की कि जैसे आप सुनेंगे, वैसे मैंने और जगह भी गाया है हरदौल चले, लेकिन आज मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि टी सीरीज के माध्यम से आप तक ऐसी चीज भेज दूं शायद आपने पहले आज से पहले कभी ऐसी चीज न सुनी होगी। देखें आप
कि भैया की
राखी मर्यादा राखी राखो कुल को पानी धरती पे हर दोल लला की नैया कौन पानी धरती पे हर दोल लला की नैया कौन पानी हर दोल लला की नैया कौन उतारी
हर दोल लला की नैया कौन उतारी हर दोल लला की नैया कौन उतारी
में घरी एक शुभ आई नगर और छा में महलन के द्वारे बजी बधाई और प्रभु की लीला को न जाने ऐसी विपदा आई और इसे जन्म हर दोल लए उस माता स्वर्ग सिधाई जैसे ही हरदोल का जन्म हुआ उनकी माँ स्वर्ग से धार गई बताओ इतनी विपत्ति ने लेकिन ये साथ दिया उनके बड़े भाई जिझार सिंह की पत्नी चंपावती ने क्या किया उन्हें दूध पे बाहर दौल पाल दे जिधने ए लिखी थी और भैया बड़े जुझार सिंह की पत्नी चंपावती थी माँ की गोद मिली ना लेकिन ममता ऐसी मिल गई माँ की गोद तो नहीं मिली लेकिन ऐसी ममता भाभी ने दे डाली कि माँ की कमी पूरी कर दी क्या किया माँ की गोद मिली ना लेकिन ममता ऐसी मिल गई और दिन दूनी और रात चौगिनी वंश देल जा चल गई और ऐसो प्रेम मिलो भाभी को माँ की ममता भूले और गोद मिली और दूध मिलो लाला अपने मन माँ बेटा को प्रेम देख के थकित भैया पानी माँ बेटा को प्रेम देख के थकित भैया पानी धरती पे हर दोल लला की नैया कौन पानी
धरती पे हर दोल लला की नैया कौन पानी
Thank you. सिंह की पत्नी रानी चंपावती। हरदौल की माँ खत्म हुई, वो उठाकर ले गई, अपना दूध पिलाया और उस बेटे को अपनी गोद में फुलाया और पाल पोस दिया। भाभी का ऐसा देखो जो और जब बड़ा कर दिया। अब कुछ दिनों में क्या हुआ कि महाराज जीर सिंह जी जो हरदौल के पिताजी, क्योंकि वृद्ध हो गए थे, स्वर्ग से धार गए।
कछु दिन में वीर सिंह जू राजा स्वर्ग से धारे और राजा बने जो झार सिंह जू नगर पुर छावारे।
महाराज वीर सिंह जू जब स्वर्गदेव स्वर्ग लोक को चले गए, यद्यपि वो चाहते थे जिंदा जी से कि ओरछे का राज और ओरछे का राजा हरदौल बने, लेकिन हरदौल बहुत छोटे थे, इसलिए उनके स्वर्ग से धारने के बाद ओरछा का राज क्योंकि बड़े भैया के नाते महाराज जुझार सिंह को मिला और चंपावती महारानी बन गई।
एक दिवस भोजन कर दे राजा महलन में आए और दो भैया जेवन बैठे रानी भाग सजाए।
महाराज जुझार सिंह और हरदौल दोनों भैया बैठ गए एक साथ महलों में भोजन करने के लिए। अब क्योंकि वो हरदौल से इतना प्रेम करती थी बेचारी, इतना प्रेम करती थी कि औलाद से भी ज्यादा करती थी, अब और क्या कर सकती थी। उसे खबर नहीं रही कि सोने का धार किसके सामने जाना और चांदी का धार किसके सामने जाना। दोनों धार लाई और सामने ऐसे परत दिए, लेकिन
प्रेम मगन मन भई चंपावती कछु ध्यान ना की हो और सोनो धार दो लाले राजे चांदी को दीन हो।
चांदी का धार महाराज जुझार सिंह के सामने पहुंच गया। तब
थोड़ो सो सोचो राजन फिर भूल गए बातन में और कई बार ऐसो हो गो तो लाला के बचपन में।
ऐसो कई देर बहुत महाराज जुझार सिंह ने ध्यान नहीं दिया, उसको सोचा और छोड़ दिया कि जानन तो शायद रानी भूल गई होगी। अब
भोली भाली रानी और लाला भी भोले भाले और प्रेम मगन दो रहे महल में राजा मने कसाले। अब की खाका लिख दई विधाता को नऊ की जान, खाका लिख दई विधाता को नऊ की जानी। धरती पे हर दौल लला की नैया को नऊ पानी।
हिंदुस्तान तो चूंकि महाराज जुझार सिंह और हरदौल, ये ओरछा राज का कर नहीं देते थे। इससे मुगल बहुत जलते थे उनसे कि ये राज का कर क्यों नहीं देते। उनने क्या किया कि महाराज जुझार सिंह शिकार को गए थे, इसे एक पठान काबुल से भेजो नगर और छा आओ, और दई ललकार नगर में उने पहलवान आ जाओ। बुंदेली धरती पे आके को अगर ललकारे, ये बुंदेलखंड का पानी है, इस धरती पे ललकार सहन नहीं करी जा सकता। बुंदेली धरती पे आके को अगर ललकारे, तो वीर बुंदेला लाला सुन के देखत नहीं पछारे। और हरदौल दौड़ गए, पहलवान भी थे, ललकार नहीं सहन कर सकते, और दौड़ गए लड़ने के लिए कि मैं देखूंगा कैसा पठान लड़ने आया। भाई पहलवानी दंगल में दोनों कुश्ती लड़ दे, और भाव सिर जोर पठान और हरदौल धरन पे गिर दे। पहलवानी में पठान सरमौर हो गया, हरदौल बार बार धरती पे गिर जाते थे। ये घिर की अटारी पे चढ़ी चढ़ी चंपावती देख रही थी हरदौल की भाभी माँ। देखा जो देखो भाभी माँ ने, तब धीरज छूट गो भे, और दासी भेज दई लाला खां महलन बुला लो हे। धरी हाथी तलवार महल में नप जुधार ने दई थी, और कभू काऊ खाना दई यो रानी से ऐसो कही थी। राजा जुझार सिंह ने महारानी को एक तलवार दी थी एक बार, और ये कहा था कि ये तलवार तुम मेरे अलावा किसी को नहीं दोगी कभी नहीं, ये वचन ले लिया था। लेकिन जब उस पहलवान से लाला हरदौल को भाभी माँ ने हारते हुए देखा कि ये कहीं मेरा लड़का मर ना जाए, तो वो धीरज छूट गया, अंदर बुलाया महलों में, और वो तलवार उठा के दे दी, बेटा ले जाओ जाओ लड़ो। तलवार का नाम था भवानी। जाओ लड़ो जी को बेटा दे दई तलवार भवानी, जाओ लड़ो जी को बेटा दे दई तलवार भवानी। धरती पे हरदौल लला की नैया कौन,
धरती पे हरदौल लला की नैया कौन, धरती पे हरदौल लला की नैया कौन।
जाए भिड़े हरदौल उते अरु देर करी ना पल की हो परो मठान। एक बार में सिर्फ एक ही बार हरदौल पहुंचे सूरज के सामने मुंह करके खड़े हुए तो मरो पठान आज लादा ने राखी बुंदेलन की। अब बातलवार कोई दिन से भाभी ने दैला लाख और ममता में सब भूल गई नहीं देने पीला लाख। ये भूल गई कि हमें ये तलवार अपने देवर को देना दिया नहीं। महाराज ने खूब मना किया लेकिन तलवार दे दी और हरदौल ने अपने कमर में बांधी। अब ऐसी बातें कहाँ लो कहिए लाला भौजाई की और जैसी माँ बेटा की होती तो लाला भाभी की। बैठत उठत हंसत खेलत लग गए भाभी के अंगे। हंसत उठत बैठत सोत परत खेलत हर चीज में भाभी के साथ। अगर सोना भी है तो भाभी के साथ सोना। बैठत उठत हंसत खेलत लग गए भाभी के अंगे और धीरे धीरे बड़े भये हरदौल समय के संगे। अब काल करम गति लेख लिखी गति काल हमें न जानी। काल करम गति लेख लिखी गति काल हमें न जानी। धरती पे हरदौल लला की नैया कौन पानी।
धरती पे हरदौल लला की नैया कौन पानी। धरती पे हरदौल लला की नैया कौन पानी।
समय के साथ हरदौल बड़े होते गए और बड़े होते होते वो 22 वर्ष के हो गए। अब जब 22 वर्ष के हो गए देखो जब भाभी ने लाला 22 को हो गए है सुंदर सौ परिवार ढूंढ के तुरंत ब्याह कर दो है। 22 साल की उम्र में 22 साल की उम्र में उस लड़के ने उसने कई तारीफ की अपनी जिंदगी में। 10 साल की उम्र में वो 3 लड़ाई जीत चुका था और 22 वर्ष की उम्र में 7 लड़ाइयां लड़ चुका था और महाराज चंपत राय छत्रसाल के पिताजी उनका साथ दिया चंपत राय। 22 साल की उम्र में लाला जीती 7 लड़ाई और चंपत राय रहे रण संगी कब हम करी नानाई। उते मुगल चाहत ते कब दो भैयन खां लड़वावे और जे दो लड़ मरे और छा लाज हम ही पा जावे। मुगल शासक ऐसा चाहते थे 16वीं शताब्दी में कि ये दोनों भाई अगर लड़ मरे आपस में तो ये ओरछा का राज हमें मिल जाएगा और उनका टैक्स भी मिलने कर भी मिलने लगेगा। देखो आप
बहुत दिनन से सोचत बैठे मौका ना मिल पावे और कैसो का हम करें ओरछा मिट्टी में मिल जावे। तब
ये मुगलों की बात है, उनके मन में ऐसा था।
होर फार राजा जो झार खां संग मिला लो अपने, होर फार राजा जो झार खां संग मिला लो अपने, ओ लालच दिखा दिखा के उनके बड़े बना दे सपने।
महाराज जुझार सिंह को अपने साथ मिलाया और मिला करके उन्हें लालच दी कि तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा कर करके उन्हें अपने साथ मिला ली और दो भाइयों में फूट डाल दी। और फूट जानते हो कैसी होती है,
फूट परे से मिट गई थी लंका कैसी राजधानी, अब फूट परे से मिट गई थी लंका कैसी राजधानी, धरती पे हर डोल लला की नैया कौन पानी,
धरती पे हर डोल लला की नैया कौन पानी, धरती पे हर डोल लला की नैया कौन पानी।
भैया
संबत 1665 से ये संबत 1688 शुरू हुआ माने हरदौल की 23वीं बार। हाँ, उस 23 वर्ष की उम्र में उस बुंदेला वीर ने मात्र छोटी सी उम्र में वो करके दिखा दिया जो 23,000 वर्ष जीने के बाद भी आदमी नहीं कर सकता, वो किया। क्या
अति बसंत पंचमी संबत 1688 और 23 वर्ष के लाला हो गए विधि ने गत ना गांसी।
उस विधाता की गति का पता कौन चलता है कब क्या करता है। अब 23वें वर्ष में जब शुरू हुए प्रवेश किए और धीरे धीरे 23 वर्ष के हो गए बसंत पंचमी को, तब क्या हुआ।
नृपत जो झार लौट रहे थे बंगाल लड़ाई लड़के, ओ मुगलन को एक दूत हिदायत खां बोलो है जरके।
मुगल शासकों उसी समय जो झार थी बंगाल से लड़ाई लड़के लौट रहे थे और रास्ते में ही हिदायत खां को भेजा कि तुम रास्ते में रोको, दो भाइयों के बीच ऐसी फूट डालो कि जिनमें से दोनों टूट जाए। हिदायत खान ने वही किया। आए बीच रास्ता में ही ओरछा के पहले रोका और कान के पास लग करके और बोला,
तुमको नाए माए घूमत हो तुम्हें खबर कछु है ना,
और महलन भीतर गुल खिल रहे हैं, बोलो पापी देना। तुम्हें पता है राजन कि तुम्हारे महलों में क्या हो रहा है? महाराज जुझार सिंह ने कहा, हिदायत अच्छी तरह से बात करो। बोले मैं सही कह रहा हूँ, आपके महलों के भीतर गुल खिलते हैं। महाराज जुझार सिंह ने कहा, किसके गुल खिलते हैं? हिदायत तो बोला, क्योंकि चुगलखोर है ना, और चुगलखोर अपनी चुगली से वापिस नहीं आ सकता। बोला के हैं तुम्हारे हर दौल महल में और तुम्हारी रानी, और टारो तुम दे जाते देख के उनकी सेना कानी। अब बोले मुझे पता है कि तुम उनकी बातें सुन करके इधर उधर की बात करते हो और सुनते नहीं हो, देखते नहीं हो, टाल देते हो।
बोले नृपत क्रोध में आके कैसे सांची माने।
हिदायत हमें ये बताओ, क्या तुम्हारी बात तो सच है, इसमें कोई सच्चाई है, कोई दम है? हिदायत बोला, महाराज विश्वास ना हो तो बताऊं। महाराज बोले, एक काम करो।
अरे बोले नृपत क्रोध में आके कैसे सांची माने, ओ गलत बात ना करो हिदायत लगे उबे समझाने।
वो बोला,
ना मानो तो महलन ने तुम जइयो चुप्पी साधे।
बताता है कि अगर मेरी बात ना मानो तो तुम आज महलों में जाना और बिल्कुल चुपचाप जाना, किसी से कोई बात नहीं करना।
ना मानो तो महलन ने तुम जइयो चुप्पी साधे, और जो कटार दैती धर दे हर दौल कमर में बांधे।
तुमने महारानी को कोई कटार दी थी? महाराज जुझार सिंह ने कहा, हाँ दी तो थी। बोले वो कटार तुमने रोका था कि किसी को ना देना? बोले हाँ ये भी कहा था। बोले देख लो, वो महारानी ने हर दौल को दे दी अपने देवर को, और तुम्हारा छोटा भैया हर दौल वही कटार कमर में बांधे होगा, देख लेना जाके। वाह वाह वाह, चुगलखोर की बात आई इतनी पक्की।
तो जरे फपोला भय भीतर सेन पति अकल बोरानी, जरे फपोला भय भीतर सेन पति अकल बोरानी, धरती पे हर दौल लला की नैया कौन। बातें सुन राजा हंस गए अब चक्कर में।
देखो क्योंकि चुगलखोर कैसा होता है, एक जरा सी बात आपको बताऊं।
कि सूरवीर चूक जाते अपनी कमानों से, और नारशीष चूक जात को पथ के ठहराने से। वृक्ष को चढ़ैया कबहू वृक्ष भूत चूक जात, नदी को तेरैया कबहू चूकत तेराने से। कि पंडित पर चूक
एक जात खास छोरा के चलाने से कहत कभी रामाधीन बड़े ज्ञानी और ध्यानी चूक जात पे एक नहीं चूके चुगल चुगली चलाने से तो चुगलन की बातें सुन राजा हंस गए अब चक्कर में और जो कटार रानी खा दई देखी हर दौल कमर में। जैसे ही महलों में पहुंचे तो जो कटार उन्होंने रानी को दई थी और मना किया था वो देखी कि हर दौल के कमर में बंधी है। अब भूपति महाराज जुझार सिंह जी को अपनी पुरानी सब बातें याद आई रानी ने जो की थी। सोचने लगे महलन के अंदर पहुंचे और रानी खां बोलो आयो और लाल नेत्र कर क्रोध में भर के ऐसो वचन सुनाओ। बोले रानी सुनो तुम्हें हर दौल बहुत है प्यारो और साची साची हमें बता दो को आए तुम्हारो तुम्हारी कार रिश्तेदारी है इसी हर दौल से। महारानी को बुलाया चंपावती को महाराज जुझार सिंह अपनी पत्नी को और बोले ये बताओ कि हर दौल से तुम्हारी कौन सी रिश्तेदारी है। हमने सुना हर दौल तुम्हें बहुत प्यार है और तुम हर दौल से बहुत प्रेम करती हो। तो बोली महाराज प्रेम तो करती हूँ इसमें कोई दोहरा है नहीं कि हर दौल से प्रेम नहीं करती हूँ। महाराज बोले तो ये सही से ही हमें बता दो कि वो तुम्हारा होता कौन है। पाप समानो तुमरे मन में हम खा दिखा परो है और कंचन थारे हुए दैते चांदी को हमें धरो है। बाबा त्यागाई बोले इसीलिए तुमने कई बार ऐसा किया रानी कि जब खाना खाने हम दोनों बैठे तो सोने का थाल जो राजा को मिलना चाहिए मुझे वो तुमने मुझे ना देकर के हरदौल को दे दिया और चांदी का थाल जो हरदौल को मिलना चाहिए उसमें तुमने मुझे भोजन परोस दिया तो तुम्हारे मन में पाप है। वाह एक महारानी से और पतिव्रता महारानी से ये शब्द कह देना कोई मामूली बात नहीं। जल गई अंदर से बोली बोली और कुछ कह लो जो कहना हो। जुझार सिंह बोले एक तलवार दई थी और कई थी हमने दे भी कहा था तलवार देते समय एक तलवार दई थी कई थी काहू खाना दईयो और गई हर दौल कमर में बांधे अब सांची के दईयो। वो तलवार भी तुमने जो मना किया था मैंने कि किसी को नहीं देना तुमने हर दौल को दे दी वो कमर में बांधे अब बेचारी क्या रोती कि मैंने क्यों दे दी। अरे उसने तो इसलिए दी थी कि कहीं वो पठान हमारे लड़के को मार ना डाले हमारे हरदौल को हमारा देवर मर ना जाए तो शायद ये तलवार रक्षा कर लेगी इसीलिए मैंने दे दी थी लेकिन नहीं। और राजा बोले कि दाग लगा दो कुल में तुमने कैसी तुम महारानी दाग लगा दो कुल में तुमने कैसी तुम महारानी धरती पे हर दौल लला की नैया कौन हरदौल हमारो ओ जी खां दूध पिलाओ कूलर का प्राणन से प्यारो। बोली तुमने ये पूछा ना कि तुम्हारा क्या रिश्ता है, वो तुम्हारा कौन होता है, तो महाराज वो एक तो हमारा है, हम दोनों का है, तुम्हारा छोटा भाई हमारा देवर है, और फिर मैंने तो दूध पिलाया, वो मेरी औलाद है, औलाद के समान मुझे प्यारा है। ये क्यों पूछा आपने कि वो कौन होता है, मेरा लड़का होता है।
बोली रानी सुनियो राजन हे हर दौल हमारो ओ जी खां दूध पिलाओ कूलर का प्राणन से प्यारो। छाती से चिपकाओ खां अपने संगे पारो ओ कैसी बात अपने ने के दई उन्हें कहा बिगारो।
महाराज हमें जा बता दो कि लड़का ने माओ लव का है, ऐसा उन्हें क्या कर दो, कौन सा दोष लगा दो गए।
दाग लगे ना कभू वंश में चंपावती है जोलो।
रानी बोली कि तुम बूंदे लाओ और हम तुम्हारी छत्राणी है महारानी का हो, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं धरती पे जोलो ये ओरछा के वंश में दाग न लगता है महाराज, ऐसी बात मत करो।
दाग न कोन लगे वंश में चंपावती है जोलो और ऐसी बात करो ना राजा बोल समर के बोलो।
अब एक बात बताओ महाराज
कि कैसी शंका मन में आ गई सांची आज बता दो और कैसे शंका दूर हुए जो तनक मोए समझा दो।
जो भर बता दो कि जब शंका कैसे तुम्हारी दूर हुई है, जो तुम्हारे मन में जो भ्रम पैदा होगा जो भ्रम कैसे दूर हुई है।
जितनो भोजन बना धरो है उमें जहर मिलाओ।
कितनी बढ़िया बात करी राजा ने, जैसे ही रानी ने पूछी कि हमें जो भर बता दो महाराज कि जो शंका तुम्हारे मन में हो गई ये हरदौल तुम्हारा कौन होता है और आपके मन में आपने ये कह दिया कि तुमने पाप किया और साथ में ये कह दिया कि तुमने कुल को दाग लगाया, तो ये बात सिद्ध हो गई कि तुम्हें हमारे और हरदौल के ऊपर शक है, और अगर शक है तो ये बताओ कि ये संगत तुम्हारी कैसे दूर होगी।
कहे जुझार सुनो रानी जो अपनी चाव भलाई और जितनो भोजन
जितना तुमने भोजन चाहा अगर भलाई चाहती हो।
कहे जो झार सुनो रानी जो अपनी चाव भलाई ओ अपनो दाग बचाने तो जा मानो बात हमारी। जितनो भोजन बना धरो है उमें जहर मिलाओ ओ कोई जहर के भोजन अपने हाथन उबे खिलाओ।
ये शंका का निवारण है कि अगर तुम्हें दाग मिटाना चाहती हो तुम अपनी जिंदगी का अपने दामन का, तो वो जहर जितना भोजन है पूरे में जहर मिला दो और मिला करके वो हरदौल को खिला दो अपने हाथ से, बस मैं जान जाऊंगा कि तुम पति व्रता हो सही हो।
बोली सुनत लगी गोली सी, बोली सुनत लगी गोली सी गिरी धरन बिल खानी रानी गिरी धरन बिल खानी। धरती पे हरदौल लला की नैया कौन
Thank you।
जगी मूर्छा से बोली कहाँ अकल तुम्हारी। पहले तो रोती चिल्लाती, जैसे ही राजा ने कहा कि उसे जहर चला दो तुम अपने हाथ से, तो बेहोश होकर धरती भी गिर पड़ी। लेकिन होश आया, होश में खड़ी हुई, अब बोली महाराज तुम पागल हो गए हो या विधाता ने तुम्हारी मति मार दी है, बुंदेला हो तुम। रानी जगी मूर्छा से बोली कहाँ अकल तुम्हारी, ओ हमें लगत के पागल भैया तुम्हारी मति गई मारी। बुंदेलन की शान में ऐसो हब्बा लगे करारो। महाराज अगर ये बात आपने कही ना कि हरदौल को देवर को जहर खिला के मार डालो तो तुम बुंदेला हो, क्षत्रिय हो, और ओरछा के बुंदेलों की शान में वो धप्पा लगेगा कि सारी जिंदगी धोते धोते सात जन्मों तक नहीं जूट पाए। बुंदेलन की शान में ऐसो धप्पा लगे करारो, ओको नाम ना ले है जग में अपयस हुए तुम्हारो। इस दुनिया में कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, कैसे जुझार सिंह थे राजा ओरछा के, ये क्या कह रहे हो। तब राजा गए दरबार, गई रानी महलन के अंदर। राजा ने कोई जवाब नहीं, वो तो कह गए कि उसे जहर खिला दो और चले, वो चिल्लाती रही बेचारी रानी, ये क्या कह रहे हो, वो देवर है, मैंने दूध पिला के उसे बड़ा किया है, मेरी औलाद है वो, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं उसे जहर नहीं खिलाऊंगी। तो राजा गए दरबार, गई रानी महलन के अंदर, और इतने आंसू बह गए रो रो के भर गए समंदर। लेकिन अब कौन आंसुओं की कीमत करने वाला था, कौन देखने वाला था कि महारानी रो रही है कि क्या हो रहा है। तो नृप जो झार अपने हाथन भोजन में जहर मिलायो। देखिए राजा जी का दरबार से आए लौट के, उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि रानी कहीं जहर न मिला, तो जितने भोजन रखे थे सभी भोजनों में जहर मिला दिया। महाराज जुझार थी, अपने हाथ से मिलाया, रानी के सामने मिलाया। नृप जुझार अपने हाथन भोजन में जहर मिलाओ, निकल गए बाहर कह गए हर दौले अब ही बुलाओ। घर से बाहर निकल गए, महलों से बाहर गए, और बोले हर दौल को अभी बुला लो, अभी बुला के तुरंत उसे खिलाओ, हमारे सामने खिलाओ, इतना कह के निकल गए। तब कर शिकार हर दौल लौट कर भाभी के ढिंग आए। एक ही तो भाभी थी, वही माँ थी, वही ममता थी, वही गोद थी, वही दूध था, उसी के हाथ का भोजन पाते थे। शादी हो गई थी, एक लड़का हो गया था, लेकिन भाभी के हाथ का ही भोजन करते थे, किसी दूसरे के हाथ का नहीं। क्यों, भाभी ने दूध पिलाया, इसीलिए। भाभी के पास आए, बसंत पंचमी का दिन था, आए संवत 1688 में। देखिए वो दिन कैसा होगा उस जिंदगी का। कर शिकार हर दौल लौट कर भाभी के ढिंग आए, और भूख लगी कहकर भाभी से भोजन तुरंत मंगाए। भाभी हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दो। लाला चलो ना, आज ऐसा खाना खिलाऊंगी कि तुम्हें सारी जिंदगी भूख नहीं लगेगी कभी, आज तो बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी, चलो मेरे साथ। कि बैठो लाला भोजन पालो, बोली रानी पानी। बैठो लाला भोजन पालो, बोली रानी पानी, ऐसी बोली रानी पानी। धरती पे हर दौल लला की नैया कौन। धरती
कर ले गई मंदिर के आंगन में बैठारो ओ बने गवाई राम राजा सरकार करे निपटारो।
हमारे तो राम राजा सरकार है, सिर्फ यही निपटारो करे, यही गवाही यही बात के कि हम निर्दोष हैं, हमने लाला खा जहर नहीं दो, हम जहर नहीं दे रहे। लेकिन खाकर की बिचारी, एक तरफ पति का आदेश कि तुम जहर दे दो हर बल को, दूसरी तरफ पुत्र के समान देवर, धर्म स्नेह उभय मत घेरी, क्या करती? अगर जहर खिलाती है तो पुत्र के समान देवर जाता है, और अगर जहर नहीं खिलाती है तो पति पर धर्म के दामन में दाग लगता है। दोनों बातें निभाई कैसी? राम राजा सरकार को अपने गवाही बनाया कि भगवान राम तुम ही हमारे गवाही हो।
हाथ पकड़ ले गई मंदिर के आंगन में बैठारो हो बने गवाही राम राजा सरकार करे निपटारो। परसो थार और लियाई धर दो लाला के सामे और टप टप असुआ चुअत देख गई लाला के बामे
बामे अंग में बैठ गए, बैठ के रोने लगी बेचारी। रोज आकर की हवा करके खाना खिलाती थी, उस दिन सामने बैठ गई और रोने लगी।
भाभी माँ को रोवत देखो हार छोड़ दो उनने, ओ कैसी रो रही बोलो भाभी आके दई है किनने। बेहवल हो गए लाला उनके बोल कड़े ना मुख से, ओ बोल पड़ी बैठी थी तेलों भारी पति के दुख से।
चिल्लाने लगी, पहले से बोल पड़ी, एक तो पति के दुख से दुखी थी, इधर लाला बोल पड़े, बिल्कुल बेहवल हो गए, लाला रोने लगे, हरदम रोने लगे। भाभी क्या बात है, रोज आंचल की हवा करती थी, आज सामने बैठ के रो रही हो भाभी, क्या बात है, कुछ बताओ ना, किसी ने कुछ कहा है आपसे? बारे भोले लाला
तो धीरज धर के सुनियो लाला नैया दोस्त तुम आओ, ओ मन के कारे तुम्हारे भैया ने जो दोष लगाओ।
जिन्हें तुम बड़ो भैया मानत बाप के समान मानत, वे बड़े भैया दिल के कारे हैं मन के कारे हैं, उनकी का लखने दोष लगा दो। और
भैया बड़े कछु के जावे भागी कान न दियो, ओ कछु ना दोष लगाओ हमें जो भैया से के दियो।
भाभी भैया से कह दियो कि हमें कोई दोष मत लगाओ, हम कोई दोषी नहीं है। भाभी तुम गंगा के समान पवित्र हो, भैया के दोष लगाने से क्या दोषी बन जाओगी? नहीं, ओ ब्रह्माई तो माँ हो, तुम सवाल ही नहीं उठता कि तुम दोषी हो। के दई उनने उन्हें कान दो बे राजा तुम रानी। अगर भैया कह गए तो भी ओरछा के महाराज हो आप, महारानी हो, क्या परेशानी है। के दई उनने उन्हें कान दो बे राजा तुम रानी, भाभी तेरा जा तुम रानी। धरती पे हर दौल लला की नैया को नौ
पानी।